ये सूरत का आखिरी सबक है, तो इसमें हमें कुछ बातें मजीद समझ आएंगी। इस पूरे सबक में पर्पस ऑफ लाइफ, जिंदगी का मकसद क्या है, बड़ी मारूफ आयात आज के सबक में हमारे सामने आएंगी, जो हम शुरू से कई बार सुनते आए कि अल्लाह तला हमसे दो सवाल पूछता है, क्या फहसिल तुमन्ना मा खलकना कुमा बसा। आज के सबक के आगाज में अल्लाह तला की तौहीद के कुछ दलाइल हैं, क्योंकि जब तक अल्लाह ताला की कदर नहीं आती, उसकी बात की कदर भी नहीं आती। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एक इंसान की मौत के वक्त की बेबसी, कि किस तरह से जब दुनिया से जा रहा होता है तो उस वक्त उसकी ख्वाहिश होती है कि थोड़ा सा वक्त भी अगर मुझे मिल जाए तो मैं कुछ छोड़े हुए काम कर लूं। फिर आज के सबक में हम ये भी देखेंगे कि हमें लंबी उम्र मिल जाती है, इसके बावजूद भी हम अच्छे अमल क्यों नहीं कर पाते। तकरीबन हम 15 मुख्तलिफ किस्में देखेंगे कि अच्छे अमल ना होने की वजह क्या है। और उसके बाद आलम बरज़ख क्या होता है, इसके बारे में बात होगी। फिर इसी तरह से बुराई का जवाब भलाई से कैसे दे, यानी जब कोई हमारे साथ बुरे तरीके से पेश आए तो हमें उसके साथ क्या मामला करना है। जहन्नम में जहन्नमियों की शक्लें कैसी बिगड़ जाएंगी, उसका जिक्र है। और चंद दुआएं हैं जिनको मांगते हुए हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला से मदद मांगेंगे कि हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वो दिन हो जिस दिन हमारी जान जाए। आइए शुरू करते हैं, आयतों के साथ साथ चलेंगे। आयत नंबर 21 से, आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, मत तखज़ल्लाहु मिन वलदिन, अल्लाह ने हरगिज किसी को अपनी औलाद नहीं बनाया। हर दौर में अल्लाह ताला के साथ जो शिर्क किया गया उसमें कहीं ना कहीं अल्लाह ताला के साथ नसब नाते का जिक्र किया गया। चूंकि इस सबक में रिश्तों नातों की बात आने वाली है, तो अल्लाह ताला ने यहाँ अपने आप को क्लियर कर दिया कि मेरा इंसानों के साथ सिर्फ एक ही रिश्ता है, और वो खालिक और मखलूक, आबिद और माबूद का। तो लिहाजा मेरी रिश्तेदारियां ना घड़ो, मेरा कोई बेटा नहीं है। और दूसरी बात यह कि वमा काना माहु मिन इलाहिन, ना ही इसके साथ कोई और माबूद है। यानी दो बातें क्लियर कर दी आयत 91 के शुरू में ही। नंबर एक, अल्लाह की कोई औलाद नहीं, ना बेटा ना बेटी। और औलाद नहीं है तो साथ ही साथ सूरत अगर इखलास की आयत को लगा लीजिए तो उसकी बीवी भी नहीं है, ना उसकी बीवी है, ना उसकी बेटी है, ना उसका बेटा, तो बाप तो कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह की जात नूर है, अगली ही सूरत में हम देखेंगे कि अल्लाह है क्या। लिहाजा कोई हम में से ये कहे कि इस माइक का कोई बाप है, इसकी माँ कौन है, इसकी बहन कौन है, तो बेवकूफी है ना। ये रिश्ते तो इंसानों के होते हैं। कभी आपने सोचा कि जिब्राइल का भाई कौन है, जिब्राइल की माँ कौन है, मीकाइल की बीवी का क्या नाम है? बेवकूफी की बात है। इवन जिन्नों के साथ भी हमारा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं। रिश्ते नाते होना करना इंसानों का मामला है, हत्ता के जानवरों के भी नहीं रिश्ते होते। आप कहें कि अच्छा इस बिल्ली का मियाँ ये है और इसकी बहन ये है, इवन अगर एक साथ एक बिल्ली के 6 बच्चे भी पैदा हो जाएं, कभी हमने उनको उनके भाई और बहन नहीं समझा। तो ये इंसानी मामलात हैं, अल्लाह के साथ ऐसी बातें नहीं रखनी चाहिए। अब अल्लाह ताला हमें लॉजिकली बताते हैं कि बिल फर्ज मोहाल उसके साथ एक और इलाह भी होता। इसको यूं समझिए कि एक हुकूमत है, एक मुल्क है, तो वहां 2 बादशाह होते हैं, या एक मुल्क है तो उसके 2 वजीर आजम होते, तो क्या नुकसान होता? इज़न लज़हबा, तब। इज़न का अगर आपको लफ्ज आ जाए तर्जमे में लिखने को तो तब, वैन देन, देन का मानी ये तब, यानी अगर ऐसा होता तब, लज़हबा अलबत्ता ले जाता, कुल्लू इलाहिन हर इला, ये छोटे छोटे कॉमे लगा लिया करें तो आपको तर्जमा कभी भी इंशाल्लाह नहीं भूलेगा, मफहूम वाज़े हो जाएगा कि अलबत्ता ले जाता, कुल्लू इलाहिन हर इला, किसको ले जाता? बीमा खलक, जो उसने पैदा किया। सिंपल सी बात है, अगर अल्लाह के सिवा कोई और माबूद होता तो क्या वो अपनी मखलूक को दूसरे के साथ रहने देता? वो तो उसको लेकर अलग हो जाते। जैसे आप देखिए ना कि 2 मुख्तलिफ पार्टियां होती हैं किसी भी मुल्क में, तो बिल आखिर दोनों पार्टियों वाले अपने अपने हम ख्याल लोगों को लेकर अलग हो जाते हैं। ये मैं हूं, मेरा गिरोह है, ये मेरी पार्टी है, ये मेरे लोग हैं, उनको अलग लेके हो जाते, वो अलग होते। वो कैसे बर्दाश्त करते हैं कि हमारी पार्टी के लोग किसी दूसरी पार्टी के लीडर को स्पॉन्सर करें? तो ये तो एक फितरी सी बात है कि हर बंदा अपनी ही चीज को लेके अलग हो जाता, और दूसरा काम वो क्या करता, लाला, इसको फिर हाईलाइट करवा लें कि फिर वो चढ़ाई करता। लाला का मानी लाला नहीं करेंगे आप, बल्कि चढ़ाई कर देता बाधो मलाबाद एक दूसरे के ऊपर। यानी पहले हर एक अपनी फौज को अलग करता, अपने स्पॉन्सर्स को अलग करता, लोगों को मुजाहरे करके दिखाता कि देखो हमारे साथ कितने लोग हैं, और जब काफी सारे लोग उसके सामने होते तो वो सोच लेता कि मेरी ताकत ही बहुत है, और जो लोगों को ताकत समझते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं, तो वो दूसरे माबूद के ऊपर हमला कर देता। दुनिया में तो ऐसे ही होता है। हालांकि सुभान अल्लाह अम्मा यसिफून, अल्लाह पाक है इससे जो ये बयान कर रहे हैं, यानी अल्लाह के बारे में ऐसी बातें करना जेब भी नहीं देता, क्योंकि आलिमुल गैबी व शहादा, वो तो गैब और शहादा को जानने वाला है। फताला बहुत बुलंद है, अम्मा यशयुशरिकून, हर उस चीज से, अम्मा क्या है अन और मा, हर उस चीज से जो यशरिकून वो शरीक कर रहे हैं। देखिए तौहीद की बेहतरीन दलायल है, दुनिया में हर इंसान अपनी बड़ाई चाहता है, उसके अंदर गुंदी हुई है ये चीज, बच्चा भी बड़ा बनना चाहता है इसीलिए दूसरे बच्चों की शिकायतें लगाता है आके। लेकिन अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान अपने बड़े बनने के जज्बे को अल्लाह के बड़े होने में छुपा दे। मैं कुछ नहीं, मेरा रब बड़ा है, इसी का नाम अब्दियत है, इसी का नाम बंदगी है। कुछ भी करे इंसान चाहता है कि मेरा नाम हो, अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम एक रब के नाम अपनी कुव्वतों को लगाकर कह दो, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, जो कुछ भी मेरे से हुआ या मैंने किया अल्लाह के सिवा और कोई नहीं था मुझे इसकी ताकत देने वाला। तो अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत की ये आदत यहां दलील में बनाई कि देखो अगर किसी और ने मिसाल है कि बादल बनाए होते अल्लाह के सिवा, तो क्या वो खामोश बैठा रहता, वो तो बादलों के नीचे भी लिख देता मेड बाय फला इला, समंदर के कोने पे लिखा होता मेड बाय फुला, प्रोड्यूसर फुला है, प्रोड्यूस उसने किया, क्रिएटर वो है, फुला कौन है। जब तुम्हें कायनात पर किसी जगह अल्लाह के नाम के सिवा किसी के आर्टिस्टी का कोई लेवल नहीं दिखता, तो मान जाओ कि ये सब कुछ रब ने बनाया। असल में बात वही है जो पिछले सबक के आखिर में थी, तौहीद। और आप देख रहे हैं आप तौहीद पे कितना गहरा जोर है। आज हम मुसलमानों को सिर्फ यही बात अगर समझ आ जाए हमारी जिंदगियों के किबले दुरुस्त हो जाए। अगली आयतों में अब अल्लाह सुबहाना तला हमें दिखाते हैं कि जब एक इंसान के ऊपर अल्लाह की पकड़ आने के हालात बन जाए तो वो अल्लाह से क्या कहे। कुल कह दीजिए, दुआएं बहुत सारी आएंगी अब इस हिस्से के साथ हमारे पास। कुल कह दीजिए, ये भी अल्लाह की मोहब्बत है कि खुद ही सिखाता है, दुआएं मांगना भी सिखाता है। क्या कह दीजिए, रब्बी ए मेरे रब। ये जो बा के नीचे जेर है ना, ये असल में छोटी या थी, छोटी या का मानी होता है मैं, मेरा, मुझे, तो अरबी में इख्तसार के लिए या की जगह सिर्फ जेर कर दी जाती है। तो रब्बी ए मेरे रब, इम्मा, अगर, इन और मा था असल में, ये जो शर्त होती है ना इसके अंदर दो लफ्ज हैं, तो मीम मीम नहीं था। अरबी का असूल क्या है कि नून और मीम जब इकट्ठा आ जाए, जैसे यहां हो रहा है, इन और मा था, इन मैंने अगर, मा मैंने जो, तो नून और मीम जब इकट्ठा होता है ना तो पहला नून भी मीम बन जाता है, तो क्या बन गया, इम्मा, तो दो मीम की जगह पे शद कर दी तो इम्मा, यानी अगर तू, इफ यू, तुरी यन्नी, तू दिखाए मुझको। अब ये जो लफ्ज है ना तुरी यन्ना, तू में तू है, ता में तू है, जैसे अक्सर जो मजारे की अलामतें उसमें ता का मानी तुम होता है। आगे क्या लफ्ज रहेगा, इराअतुन, रोयत से, रुया, रा, दिखाना, यानी इम्मा तुरी यन्नी, अगर तू दिखाए मुझको, ये जिसमें नून है ना इसको नून सकीला कहते हैं, शिद्दत है इसके अंदर, यानी अगर तू वाकई मुझको दिखा दे, मुराद ये कि अल्लाह जिस अजाब की धमकियां सारी जिंदगी इन काफरों को दी हैं, अगर तू मेरी जिंदगी में ये अजाब ले आया, मा यू आदून, जिसकी इनको धमकी दी जाती है, यानी इन कुफार को तुझे जुटलाने की वजह से जो अजाब आना है, अगर बिलफर्ज वो मेरी जिंदगी में आ गया, तो रब्बी फला तजअलनी फिल कौमि ज़ालिमीन, तो परवरदिगार मुझे इन जालिम लोगों में शामिल ना करना। यहां से आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजजी, اللہ تعالیٰ ان کو دعائیں سکھا رہے ہیں کہ اے نبی آپ یہ دعا مانگ لیجئے کہ اگر میری زندگی میں ان ظالموں کی پکڑ ہو گئی تو مجھے اس سے بچا لینا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب کسی چیز کو آپ پیستے ہیں, یعنی گیہوں کو پیسیں گے تو گھن بھی تو ساتھ ہی پیسے گا نا. جب کسی بستی میں عذاب آتا ہے تو انفال کیا میں نہیں لے گا. وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. مطلب یہ ہے کہ زلزلہ جب آئے گا تو یہ تو نہیں ہے کہ کافر کا گھر گر جائے اور مسلمان کا گھر نہ گرے, اور یہ بہت سخت بات ہے کہ جب اللہ کی پکڑ کسی ایسے ملک پہ آتی ہے جس کو اسلام کے نام پر بنایا گیا ہو, شریعت کے تقاضوں کے لیے بنایا گیا ہو, لیکن وہاں اس کا عملی نفاذ نہ ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے. اور ایسے کوڑے ہم پہ کئی دفعہ برس چکے ہیں پیچھے, تو فرمایا کہ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ مجھے نہ پکڑنا. اب یہاں تو اس دعا کی بات ہے نا, حدیث میں ہمیں اس قسم کی خوبصورت دعائیں ملتی ہیں. ترمذی کی روایت ہے, سورت سواد کی تفسیر میں آتی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے دعا کیا کرتے تھے, وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً, جب تو ارادہ کرے کسی قوم کی پکڑ کا, فتوفنی الیک غیر مفتون, تو اے میرے رب مجھے اس سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لے بغیر آزمائے ہوئے. یعنی یہ دعا بہت خوبصورت ہے کہ جب بھی ہم سب بھی مانگ سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ خاص طور پہ جب ہم لوگ نان مسلمز کے بیچ میں رہتے ہیں جہاں شرک عام ہے, زنا عام ہے, بدکاری عام ہے اور جنسی برائیاں عام ہیں, تو کسی وقت بھی اللہ کے عذاب کا کوڑا برس سکتا ہے. تو یہ دعائیں انسان کو اللہ کی پناہ میں لے لیتی ہیں کہ اللہ تو مجھے نہ پکڑنا. اسی طرح ایک اور دعا بھی آتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك, اے اللہ مجھے قتل نہ کرنا, اللہم لا تقتلنا بغضبك, اپنے غصے کے ساتھ مجھے قتل نہ کر دینا, ولا تهلكنا بعذابنا, اور نہ مجھے ہلاک کرنا اپنے عذابوں کے ساتھ, وعافنا قبل ذلك, اگر کبھی یہ عذاب آنے والا ہو تو مجھے اس سے پہلے ہی عافیت دے دے. صبح و شام ان دعاؤں کا ورد رکھا کریں اپنے آگے. ہمیں نہیں پتا, خاص طور پہ جہازوں میں بیٹھ کے لوگوں کو شرابیں پیتے دیکھ کر اور اسی طرح کے غلط چیزیں منظر دیکھتے وقت ہر وقت زبان پہ یہ دعا رہنی چاہیے. کہیں بھی زمین کے ٹکڑوں سے گزریں, کسی جگہ شرک کا اڈا ہو, کہیں شیطان ناچ رہے پھدک رہے, یہ دعائیں پڑھتے ہوئے وہاں سے گزریں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کو اگر غصہ آ گیا, زمین ذرا سی ہل گئی تو ہم بھی وہاں چلے جائیں. اور اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تھا کہ جب کسی جگہ عذاب آتا ہے تو نیک لوگ بھی تو مارے ہی جاتے ہیں, ان کا پھر کیا بنے گا؟ تو فرمایا کل قیامت کے دن وہ اپنی نیتوں پہ اٹھائے جائیں گے, یعنی ہلاک تو وہ وہیں ہوں گے. اب آپ اس کو اپنے اوپر لیجئے, آپ لوگوں کی خوشی کے لیے کسی گناہ کی محفل میں چلے گئے, یہ الگ بات ہے, آج اس کو گناہ کی نہیں فن کی محفل لوگ کہتے ہیں, اور وہاں اگر پکڑ آ گئے تو پھر وہاں بیٹھ کے یہی دعا پڑھتے رہے, اور دل چاہے تو اونچی پڑھیں, آپ کو اگلی دفعہ بلائیں گے بھی نہیں. کیا آپ کے ہمارے رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں؟ ہم خود سوچیں, کیا کبھی ہم نے شادیوں اور خوشیوں کے نام پر گناہ کی محفلیں سجاتے وقت سوچا کہ یہاں اگر عذاب آ گیا تو کیا بنے گا؟ جو تو خوش ہو رہے ہیں وہ تو خوش ہو لیں, ہم وہاں کس مشکل میں پڑھ کے جا کے بیٹھے. کیا پھر بھی ہمارے دل میں رہے گی مروت کہ اچھا فلاں کی خوشی فلاں کی ناراضگی؟ پھر وہ کہیں گے آپ تو بڑے ہیں, آپ کے بغیر تو شاید بیٹی رخصت ہی نہیں ہو سکتی. تو بھائی ہماری حیا رخصت ہو جائے, تمہاری بیٹی رخصت ہونا ہماری بلا سے. اور بات وہ گونگے شیطان بن کے ہم بیٹھتے ہیں ان جگہوں پہ اور خوش ہوتے ہیں. اور میں دیکھتی ہوں کہ خوشیوں کے موقع پہ لوگ کہتے ہیں سیگریگیشن نہیں ہو سکتی, انہیں گھروں میں کوئی دکھ کا موت کا وقت آ جائے وہاں بالکل سیگریگیشن ہوتی ہے. وجہ کیا؟ کہ شیطان اس وقت ہمیں بڑا بن کے دکھاتا ہے. تو ایسے عذابوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچا کے رکھے کہ جس میں ہم کرتے یا نہ کرتے ہوئے پھنس جائیں. اور اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ, نبی کا سوال کیا تھا کہ اگر تو مجھ کو دکھا دے وہ عذاب جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں یقیناً ہم اس پر قادر ہیں کہ آپ کو دکھا دیں وہ عذاب جس کی ان کو دھمکی دے رہے ہیں. یعنی اٹس کوائٹ پاسبل کہ آپ کی زندگی میں ان پر عذاب آ جائے. मुमकिन है। यहाँ एक छोटी सी बात जहन में रखिए, सूरह तौबा में बात हुई, कल पिछले सबक में भी बात हुई थी कि नबी की मौजूदगी में कहीं अजाब नहीं आता, पक्की बात है। और दूसरी बात है कि नबी कभी भी अल्लाह की अजाब से नहीं मारे जाते, ना तो अजाब आता है ना नबी की पकड़ होती है। इसके बावजूद नबी डर रहा है और नबी को दुआएं सिखाई जा रही हैं। तो मेरे और आपके पास तो कोई सर्टिफिकेट है ही नहीं कि आपके ऊपर कोई अल्लाह की पकड़ नहीं आ सकती। हम दूसरों को क्या कहें, हमारे तो अपने ऊपर बहुत सारे गुनाह लागू होते हैं कि जिसकी पकड़ में हम आ सकते हैं। तो लिहाजा ऐसी तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हर वक्त अल्लाह के अजाब की पकड़ का इंसान को मुंतजर रहना चाहिए। और गलत काम करते वक्त फिर वो सारा नशा हरन हो जाता है, फिर वो इंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट कहाँ रहेगी, जहाँ हर वक्त दिल ही हौल रहा है कि अभी ज़मीन फटेगी और हम इसके अंदर चले जाएंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हाँ ये ला सकते हैं, आप क्या करें। अब देखिए यहाँ मक्की सूरत है ना, ये आपको शुरू में भी बता दिया था, कितने साल का अल्लाह के नबी के साथ मक्का वालों का तकलीफ दे मामला था। कौन सी तकलीफ उन्होंने आपको नहीं दी, कौन सा इल्ज़ाम आप पे नहीं धरा, किस तरह आपके रास्तों में रोड़े नहीं अटकाए, किस तरह आपकी तरफ आने वालों को आपसे बदगुमान नहीं किया। लेकिन अल्लाह अपने नबी को क्या सिखाता है, इदफा बिल्लती ही या अहसन अहसन उस सैय, आप मुकाबला कीजिए बुराई का अच्छाई के साथ। ये है खूबसूरत किरदार। इनकी शरारतों के साथ खूबसूरती से दरगुजर कीजिए। इन लोगों का आपके साथ जैसा भी रवैया हो, मगर आपको इसका मुकाबला नेकी और भलाई से करना है। वो आपको गालियां दें, आप इनको दुआएं दें। वो आपको बुरा भला कहें, आप इनको अल्लाह की तरफ बुलाते रहें। भाई इतना सब्र कहां से लाए हम, हमें तो पता है वो हमारे खिलाफ बातें करते हैं, हमें तो पता है वो हमारे हमसे बदगुमान है। तो कहा नहनु आलमु बिमा यसिफून, ये है सब्र दिलाने वाला नुक्ता। हम खूब जानते हैं इन लोगों को जो ये बातें बना रहे हैं। यहां से अब एक दाई दीन को अमली रहनुमाई मिलती है। याद रखिए, जिसने भी हक बात पहुंचाई सबने उसको अच्छा नहीं कहा, और वजह उसकी हक है। पिछले सबक की आखिरी आयत को याद कर लें, ये हक आता है लोगों को गुस्सा आता है। आप लोगों की बुराइयां छुड़ाए उनको अच्छा लगेगा, आपको 100% यकीन है ना मेरी गलती है, और फिर भी अगर आपको उस्ताद खड़ा करके पूछे आपने ये क्यों किया, तो आपको पसंद नहीं आएगा। आप कहेंगे मुझसे पूछे ना, हाँ जी मुझे पता है मैंने ये गलत काम किया। ऐसे ही है ना, हमें बुरा लगता है कि जब कोई हमारी गलती को पॉइंट आउट करता है। तो दाई दीन का तो काम ही पॉइंट आउट करना होता है, क्योंकि किताब जो है वो कुछ और कहती है। अब ऐसे वक्त में जब लोग आपकी बात के वजह से आपसे ज्यादा दुश्मनी पे आ जाएं, तो आप क्या करें, इत्फा बिल्लती ही अहसन, इनके मुंह ना लगे, आप इनके बारे में एक भी नेगेटिव जुमला ना बोले। किल विद काइंडनेस, इसलिए कि बुराई कभी बुराई से नहीं मिटती। आपके टेबल पे दाग लगा हुआ है, और उससे भी ज्यादा गंदे कपड़े से लाके उस टेबल को साफ करेंगे ना, वो दाग तो हो सकता है उतर जाए, लेकिन उससे ज्यादा कपड़े पे लगी हुई इंक हो सकता है कि लग जाए। हमेशा साफ कपड़े से गंदी सतह जो होती है ना साफ होती है। इसके लिए सब्र चाहिए, और सब्र कब आता है, जब नहनु आलमु बिमा यसिफून, मेरे रब तुझे तो पता है ना कि ये मेरे बारे में क्या कहते हैं, मैं हूं ऐसी नहीं, ऐसी तो नहीं हूं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह तू जान ये जाने। अब इंसान कर ले ऐसा, लेकिन वो एक दुश्मन बैठा हुआ है ना अंदर, नफ्स के तौर पर और इबलीस के तौर पे, वो फिर आके जो अंदर से उश्किलें देता है, और वो जो आके अंदर वो चिलबुली करता है और जलती पे तीर लगाता है, उसका जिक्र अब अगली आयतों में, कि अगर तुझे सबर करना मुश्किल लगे, शैतान तेरे अंदर कोई ऐसे ख्यालात पैदा कर दे, तो वकुर रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन, और कहिए कि मेरे रब मैं तो तेरी पनाह में आता हूं इस बात से के शयातीन के वसवसे मुझ मेरे पास आए। यहां लफ्ज देखिए हमजात, हमजतुन की जमा, और हमज कहते हैं हरकत को, हिलाना। आप आराम से बैठे थे सबर करके, एकदम शैतान ने पीछे से आके वसवसा डाला, तो अंदर क्या हुई, वाइब्रेशन। ये जो वाइब्रेशन है ना, ये हमज है। कभी आप अकेले कमरे में बैठे हो ना, तो एकदम कमरे का पर्दा जो ना हिले, तो आपको शैतान कहेगा पर्दे के पीछे कोई है। अच्छा लगता है बिल्ली, अच्छा चूहा है, अच्छा चोर है, अच्छा सांप है, बस वो ख्याल आने की देर है, आपका चैन रुखसत हो जाता है। इसी तरह हम नहीं चाहते कि लोगों के बारे में गलत सोचें, हम नहीं चाहते बोले, सुकून क्वाइट कीप कॉम बैठे हुए, एकदम शैतान आके अंदर जाके टक करके देखता है, तुम्हारे बारे में आज उसने ये सोचा, ये कहा, वो तुम्हें पता उसने ये कहा, उसने ये कहा, बस उसी के साथ वो अंदर एक वाइब्रेशन, मैसेजिंग, टिक 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 टिक, दिमाग से ब्रेन और इधर से उधर, उधर से इधर की बातें जाती हैं, और जब ये जाए तो अल्लाह कहते फौरन पढ़ लो कि आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान का तो काम ही ये है कि वो लोगों की जिंदगी का सुख चैन बर्बाद करें। ये बात मैंने की तो मेरे जिन में एक मिसाल आ गई। आप देखिए कि जैसे ये मेरी उंगलियां हैं ना, आपकी भी हैं, ये मैं हिला रही हूं तो हिल रही है ना, ये हिल रही है, इसको मोड़ रही हूं, मुड़ रहा है। आपको पता है कि ये उंगलियों का मुड़ना कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? ये ब्रेन से। ब्रेन से मेरी इस उंगली के बीच में नर्व्स हैं, जिसको नर्वस सिस्टम हम कहते हैं, नर्व्स। न्यूरोलॉजी आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। अगर खुदा ना खास्ता ये जो नर्व्स है मेरी, जो ब्रेन से जुड़ी हुई है, अगर इसको बीच में कहीं से कट दे, काट दे, तो अब मैं उंगली हिलाना चाहूंगी, हिलेगी नहीं, कुछ नहीं होगा। जो फालज होता है, जिसको कोमा कहते हैं, उसमें सिर्फ यही होता है कि आपकी जो नर्व्स है ना, वो काम करना छोड़ती है। ब्रेन से मैसेजिंग नहीं होती। अब आप सोचिए, हमारे और अल्लाह के बीच में जो ताल्लुक है ना, उसके अंदर बीच में जो नर्व्स है ना, ये रसूल और रसूलों की दावत है, किताब है आज के दौर में। अगर ये ताल्लुक कायम रहता है ना, तो हमारा रिस्पॉन्ड करना बहुत इजी होता है। बिल्कुल हम सही रिएक्ट करते हैं लोगों से भी और अल्लाह से भी, जब हमारा ताल्लुक रसूलों के जरिए इस किताब से जुड़ा होता है। जब ये ताल्लुक कटता है, और कोई आपको जरा जुमला तो बता दे, तुम्हें पता रात को वहां शादी में लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे थे, बस सर से पांव तक पहले तो आग लगती है, नतने फूलते हैं, फट 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 यूं देखने लगते हैं, और फिर जो रोते, मुंह से जाग निकलते, जज्बाती होके फिर जो हम उसके कसीदे खोलते हैं आपके सामने, वो तो कोई बात ही नहीं है। इसका इलाज बताया गया, रिलैक्स, नहनु अलमु बिमा यसिफून, कह लो जो कहते हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और यहां ना चाहते हुए भी अबू हुरैरा याद ही आ रहे हैं कि जब किसी ने उनसे कहा कि अबू हुरैरा फलां शख्स आपकी बुराई कर रहा था, तो कहते हैं भाई बैठो, मेरी बात सुनो, मुझे तो हर वक्त तीन बातों का गम सता रहा है, कि जब नामे अमाल बटेंगे तो दाएं हाथ में बटेंगे कि बाएं में, और जब अमल तुलेंगे तो मेरा पलड़ा भारी होगा नेकियों के गुनाहों का, और जब बुलसरात से गुजरूंगा तो उस वक्त मैं बच के गुजर जाऊंगा या कट के आग में गिरूंगा, और अगर इन तीन मुकामात से मैं आसन दर्जे पे गुजर गया तो मुझे कोई परवाह नहीं कि कोई मुझे अच्छा कह के बुरा करे। ये है नाखना आलम बीमारी सिखा। और अगर मैं इनमें तीन में से किसी एक मुकाम पर रोक लिया गया, तो दुनिया के हर फर्द को हक पहुंचता है कि वो मुझे अबू हुरैरा की बुराई करे, कि कितना बुरा था देखो जो पुलसरात से नहीं गुजर सका। क्या मेरे अंदर इतना सब्र है? अपने आप से पूछिए, 18वां पारा अपने सब के करीब है। क्या मैं अपनी जात के खौल से निकली हूं, टूटी हूं कि नहीं टूटी? अच्छा, मैंने फील किया कि जब कुरान शुरू में होता है ना, तो हमें बुराइयां अपनी दिखती हैं, पता भी चलता है, साफ पता चलता है, लेकिन वो एक ईगो होती है, मुंह पे नहीं लाते। 15-20 पारों के करीब पहुंच के फिर जुबान से इंसान इजहार करता है कि कल तक मैं ऐसी थी, अब मैं ऐसी हो गई हूं, और ये जुर्रत बड़ी खूबसूरत होती है। जब हम अपने अंदर ये चीजें रखते हैं ना, तो बाद दफा फिर दोबारा वैसे ही हो जाते हैं। ऐसी कोई तब्दीली अगर आपको अपने अंदर दिखे ना, उसका फौरन इजहार करें, शौहर के सामने, बच्चों के सामने, दोस्तों के सामने, साथियों के सामने, कि इस किताब ने तो मुझे तोड़ के रख दिया। अगर मैं पहले वाली ही होती करती थी, और इसी को करेक्टर बिल्डिंग कहते हैं। इस तरह से कुरान हमें तोड़ता है कि लोगों से बेनियाज होकर, सिर्फ और सिर्फ रब के नियाजमंद होके, शैतान से पनाह मांग के, वाउज़ बिका रब्बी यहज़ुरून, और अल्लाह मैं तो इससे भी पनाह मांगता हूं कि वो मेरे कभी सामने भी आए। कौन? यहां तो शैतान है ना, आप और मैं जो बात कर रहे हैं उसमें समझ लें कि अल्लाह जो मेरी बुराई करता है, मेरा कभी उससे सामना ही ना करा, कि उसको मैं देखूं तो मेरे दिल में वो बातें आ जाए। यानी इतना ज्यादा इग्नोर करने वाला और खूबसूरत तरीके से बेनियाज रहने वाला अंदाज अल्लाह अपने नबी को सिखा रहे हैं कि आपने क्या करना है अबू जहल की गंदी बातें सुन के। अच्छा, बाज़ वो होता पता क्या, कोई बुरी बात कह ही देता है, उसके दिल में हसद है या बुग़्ज़ है या दुश्मनी है, वो और बात है, आपको तो पता ही नहीं चलनी थी, वो आपका प्यारा वहां से सुन के आके आपके दिल पे चोट डालता है, उससे ज्यादा बुरा काम आपके दोस्त ने किया। कभी किसी की कोई नहीं, उसको जवाब दे दें जिसकी बात है, उसको कभी ना बताएं। ऐसे दिल जब, फिर बाद में कहते हैं चले अब दिल पे ना लीजिएगा, वैसे दिल पे कैसे ना ले, आपने लेके दे दी। हमेशा याद रखें इस छोटे से टुकड़े को, वहां बोलें, वहां इस्तेमाल करें जहां इसकी जरूरत है, पहले तोलें फिर बोलें। आप देखें अगर ये आदत एक हमारे अंदर आ जाए, हमारे शायद 40-50% गम ही दूर हो जाए। उसने ये कहा, उसने ये बोला, उसने ये कहा, मैं सच्ची थी, मैं झूठी थी, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, तुम्हें दूसरे सुनाएंगे, तो वो सारी जिंदगी जिहाद करते गुजरता है अपनी जात के दिफा में। अल्लाह कहता है छोड़ो, जाने दो तुम्हारी बला से, और ताइये दीन के लिए शैतान के फितनों से बचने का इससे खूबसूरत तरीका नहीं। अच्छा, यहां आप दोस्तों की बात छोड़ें, बाज दफा दूसरे दोस्त, यानी सेम, बाज दफा ऐसा होता है, वो कहते हैं ना कि हम पेशा दुश्मन हमेशा, बाज दफा दूसरे दीनदार किसी दीनदार के खिलाफ बात कर देते हैं। मिसाल है कि जैसे फी जमाना अगर कोई काम कर रहे हैं आज दुनिया में, कई लोग दीन के नाम पे हैं, कोई उर्दू स्पीकिंग है, कोई इंग्लिश है, वट एवर। अब एक उर्दू स्पीकिंग शख्स के खिलाफ किसी दूसरे स्पीकर ने कोई जाके तकरीर की, या कोई उसके खिलाफ बात कर दी, उसके इदारे के खिलाफ कोई आर्टिकल छाप दिया, वहीं फाड़ दे। बाज लोग फिर उसको काट कूट के ला के कहते हैं देखें ये लोग कह रहे हैं आपके खिलाफ, और वो फिर एक बंदा और जलेगा तो कुड़ेगा ना, अखबारों में नशर करना, उसको वहीं फाड़ दे। किसी को कानों कान खबर ही नहीं होगी। और याद रखिए कि सच को आंच नहीं है। जितना अल्लाह के नबी को लोगों ने बुरा कहने की कोशिश की, दुनिया में किसी को नहीं कहा, तो क्या अल्लाह के नबी बुरे बने? नहीं। इन्ना कलाखुलु के नसीम व रफान अल्लाह का जिक्र। आप अगर सच्ची हैं तो आप मुतमईन हो के घर के कमरे में बैठ के अपना काम करें। फुर्सत ही नहीं होती एक सच्चे बंदे के पास इन कामों को लाने का। और आप देखेंगे जब ऐसे लोग जो आपके खिलाफ बात करें कभी आपके सामने आए, तो दूसरों को तो अगर आप ऐसे मिलते हैं ना, तो उसको आप यूं मिले, हाथ खोल के मिले। जब तक दूसरे दीनदारों के लिए आपके दिल नहीं खुलते, बदगुमानियों को फाड़ दें, वो आपके खिलाफ है, उनको बुरा लगेगा, वो माइंड करेंगे, उनको अच्छा नहीं लगता, उन बेचारों को कुछ नहीं लगता, ये शैतान है जो यहदुरून की सूरत में आपके दिल में बदगुमानियां डाल रहा है। ऐसी बातों से दीन की रूह खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जिंदगी भर हम ना भी कर पाए, एक दिन हमारी जिंदगी में ऐसा आएगा जिस दिन हम लोगों की बातों, उनकी तनकीद, उनकी तारीफ से बेनियाज हो जाएंगे। और वो मौत है हत्ता इज़ा जाहदहुमुल मौत, यहां तक कि जब इनमें से किसी एक को मौत आती है। किसको? जो नबी के खिलाफ बातें करते थे, अल्लाह के दीन के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन, नबी के दुश्मन। आप आखिरी दम तक पैगाम पहुंचाते ही रहें, सरफे नजर करें इनके कर दें, आप इनको अच्छे अखलाक की मार मारें, क्योंकि अच्छे अखलाक में वो ताकत होती है कि बंदा दुश्मनों को दोस्त बना लेता है। तो जब इन आया कि वो उस वक्त कहेगा मुझे छोड़ दे। अब ये कौन कहेगा? नंबर एक, एतकादी काफिर भी कहेगा, यानी कि जो कुफर पे था, अल्लाह को मानता ही नहीं था, और अमली काफिर भी कहेगा। कुफर वैसा नहीं था, अल्लाह को मानता था लेकिन अमल नहीं था। रिवायत में आता है कि मौत के वक्त मोमिन से पूछा जाता है क्या वापस जाना चाहते हो, तो वो कहता है कि मैं गमों और दुखों वाली इस दुनिया में क्यों जाऊं, मुझे तो मेरे रब के पास पहुंचा दो। मोमिन इस दुनिया में वापस नहीं आना चाहता, क्योंकि उसका असल ठिकाना तो आगे है, यहाँ तो वो सिर्फ वक्त गुजार है। सफर में कौन ज्यादा देर रहना चाहता है? हर एक चाहता है उसको मंजिल मिले। तो मोमिन के लिए ये दुनिया एक सफर है, वो इसकी मंजिल यानी अपने रब का दीदार करना चाहता है। जबकि फरमाया कि काफिर को कहा जाता है कि क्या दुनिया में वापस जाना चाहते हो, तो वो कहता है हाँ, रब इरजिउनी, मुझे वापस भेज दे। क्यों भाई, क्यों वापस आते? पढ़ लें, फिर इस पे इकट्ठी बात कर लेंगे। लाली आमल सालेहन, ताकि मैं कुछ अच्छे अमल तो कर लूं। फीमा, इसमें जो तरक तू, जो मैं छोड़ आया हूं,
ये तरफ तू के दो मानी लिख ले। नंबर एक, उस दुनिया में मुझे वापस भेज दे जिसको मैं छोड़ आया हूं, और दूसरा मतलब ये है वो अमल करूं जो मैंने छोड़े हुए थे, पोस्टपोन ने किया, जिनको मैंने बार बार पोस्टपोन किया। करूंगी जरा आज कर लू, अच्छा रमजान आ जाए, अच्छा गर्मी आ जाए, फिर सर्दी आ जाए, पर्दा करना है सर्दी आ जाए, नमाज शुरू करनी है गर्मी आ जाए, नेकी करनी है जरा शादी हो ले, तौबा करनी है जरा रुखसती हो ले, चलो ये करना है बच्चा हो ले, बूढ़े हो ले, 40 के हो जाए, तरक तू। यहां तक बात पूरी हो गई, ये तरफ छोटे से कोमा लगा ले, आगे आ रहा कल्ला, हरगिज नहीं। इस कल्ला के भी दो मानी है। नंबर एक, इसको वापस हरगिज नहीं भेजा जाएगा, यानी जो इसकी ख्वाहिश है ना रब्बिर जेओनी की, कल्ला, और कल्ला आपको पीछे कई बार बताया, नेवर नेवर इट विल हैपन, हरगिज नहीं हम इनको वापस करेंगे। और दूसरा इसका मानी पता क्या है, कल्ला ये चला भी गया तो हरगिज वो काम फिर भी नहीं करेगा जो कह रहा के करूंगा। क्यों? इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ये तो मैं महज एक बात है, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ये तो एक महज बात है जिसको ये कहने वाला है। जिंदगी में कई बार ये मौत के मुंह से बचा था, इसने वहां भी यही कहा था, अल्लाह इस बीमारी से बचा ले मैं बहुत अच्छी बन जाऊंगी, फिर अल्लाह ने बचा दिया, फिर ये कैसे कैसा हो गया, इसका हादसा होते होते बचा, और ये उस हादसे के अंदर बच गया, तो इसने कहा अल्लाह सेहत दे दे, टांग ठीक हो जाए, बाजू ठीक हो जाए, मैं ठीक हो जाऊंगी, हो गया। लेकिन इसने फिर कुछ नहीं कहा। क्या हम सब ने कभी अपने खुद से किए हुए वादों को सोचा? आज तक खुद से क्या क्या वादे किए, रमजान में क्या क्या वादे किए थे खुद से, याद है? 2.5 माह गुजर गए, 3.25 माह गुजर रहे, 3 भी गुजर जाएंगे, देखिएगा। हज पे क्या वादे किए थे खुद से, हॉस्पिटल में बिस्तर पे लेटे हुए क्या वादे किए थे खुद से, बच्चे की पैदाइश के वक्त क्या वादा किया था तकलीफ के मारे, किसी को याद है? वह हुआ कायल, हुआ कायल, वह कहते ही रहते हैं हम कायल हैं बस, बातों के माइल कोई नहीं है। याद रखिए, जितनी आसानी से हम खुद से वादे करते हैं ना उतनी आसानी से छोड़ देते हैं। कभी अपनी जिंदगी का लम्हा सोची, और हर एक पे आता है, देखिए मेरे पे भी आते होंगे, आप पे भी आते हैं, जब हमारा कोई वक्त रुका होता है खुशी नहीं मिलती। मिसाल आप शादीशुदा है तो बच्चा नहीं होता, बच्चा नहीं है, बच्चा 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 बच्चा, ऐसे लगता है सारी दुनिया की खुशियां बच्चे में। अब आप सोचिए अल्लाह ने आपको उम्मीद दे दी, शादी नहीं होती लड़कियों की, 20, 22, 24, 25 साल उम्र होगी, शादी शादी, ऐसे लगता है शादी हो जाए अल्लाह की नेमत होगी, बस पता नहीं मैंने तो क्या कर देना, अल्लाह दे देता, होगी शादी। और इसी तरह की बाकी कहानी है, जॉब नहीं जॉब नहीं जॉब नहीं, जॉब मिल गई देखना मैं कितनी अच्छी हो जाऊंगी। असल में नमाज इसलिए नहीं पढ़ता कि स्ट्रेस रहता हूँ, नमाज में दिल नहीं लगता क्योंकि तफक्कुरात बहुत है, बस अल्लाह माली तौर पर सुधा कर दे फिर देखना मैंने कितना नेक बन जाना है कि नहीं हम सबके साथ। और जब वो सब होता है उसी का नाम लेके हम अल्लाह को छोड़ते हैं। अब जॉब पे थक जाता हूँ तो मैं नमाज कैसे वक्त पे पढ़ू, अब मैं जॉब करूँ कि वहां उठ के जोहर की नमाज पढ़ू, अब मैं शोहर को खुश करूं कि मैं नमाज पढ़ूं और मैं बच्चे को देखूं, मैं तो बच्चे में फिर के थकती रहती हूँ, मैं नमाज कैसे पढ़ूं। यानी हमारा हाल उस ना शुक्र इंसान वाला है जो मालिक हमें खुशियां देता है, उन खुशियों को पाकर उसी से मुंह फेरते हैं, इससे भी ज्यादा कोई नमक हराम हो सकता है? सारी जिंदगी जिसको पीछे डालते हैं ना वो रब, रब का काम है, रब की बात है, और एहसान जताते हैं वल्लाही उस रब के ऊपर, कितना एहसान कर रही हूं कि मैं तेरा दीन सिखा रही हूं, तेरी किताब पढ़ा रही हूं, देख मैं कितनी बड़ी हो गई हूं, अब तुझे मेरी हर बात माननी पड़ेगी ना उस वेला। याद रखिए, अंदर से नहीं टूटेंगे ना तो ये कुरान आपको कुछ भी नहीं देगा, सिर्फ एक कोर्स है जो आपका पूरा होगा और आप रुखसत हो जाएंगे, और शायद हमेशा के लिए रुखसत हो जाए। लेकिन ये वो रुस्ती है जिसके बाद दुनिया में आना नहीं है, और इंसान उस वक्त कह रहा करो बिरजे होनी अल्लिया अमल साले, अल्लाह अमल कर लो अच्छे काम करा ले। हदीस में आता है कि मन अहब अल्लाह, वो जो अल्लाह से मुलाकात का इंतजार करता है, अहब अल्लाह लिकाहु, अल्लाह उसे मुलाकात का इंतजार करता है। वरना याद रखिए कि आज इस दुनिया से आंख बंद तो कल उधर जब आंख खोलेगी तो होगा क्या, वो मेम वरा हिम बरज़खुन इला यौमि युबअथून, और इनके पीछे एक बरजख है, और बरजख कहते हैं पर्दे को, ये रुबाई है, बाराज़ाखा पर्दा, और इस्तलाह में कहते हैं मरने से लेकर क्यामत के दिन कब्रों से निकलने के दरमियान का वक्त। कब्र में गुजार ले तो भी बरजख है, परिंदे नोच के खा गए तो वो भी बरजख है, डूब के मरे तो वो पानी आपकी बरजख है, जल के राख हो गए तो वो राख आपकी बरजख है, लेकिन ये मरने के बाद वापस ना आने वाला वन वे रोड है। इला यौम युब अजोन, बस सब तो अगले जहां में उठाया जाएगा। जब मौत के बाद बास बादल मौत होगा, फिर तुम उठाए जाओगे और वहां ये बात होगी, वहां जाके तुम्हें इस चीज का पता चलेगा कि जिंदगी किन ना काम आने वाली चीजों में गुजार दी, किन चीजों को बुनियाद बनाया। आप देखिए, मैं और आप वक्त की थैली लेकर हाथ में निकलते हैं रोज सुबह, क्यों हम काम की चीजें उसमें नहीं डाल पाते, क्यों हमारा वक्त बेकार चीजों में लग जाता है, क्योंकि हम अपने इस वक्त की कीमत नहीं पहचानते। किस चीज की ख्वाहिश कर रहे मरने वाला, लाली आमल सालेहन, तो सवाल पैदा होता है कि हमें पता भी है, चाहते भी हैं, इसके बावजूद अमूमन लोग लंबी उम्र मिलने के बावजूद अमल क्यों नहीं करते। तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात लिख लीजिए। नंबर एक, इल्म की कमी। इल्म ही नहीं है कि ये नेकी का काम है, 10 दफा तर्जुमा याद करना ये इतना मुझे मिलियनेरियन बना देगा कि दूसरे लोग क्यामत के दिन मेरे हाल पर रश करेंगे। इल्म ही नहीं है, लाशौरापन, हमें पता ही नहीं है, वैल्यू नहीं है। इल्म को यहाँ वैल्यू कह ले, सिर्फ कानों की हद तक पता होता है लेकिन दिल को यकीन नहीं कि इससे मुझे मिलना क्या। दूसरी वजह, सुस्ती, पता भी है सब है लेकिन सुस्त है, कभी अपने बोले हुए लफ्ज गिने और उसको इक्वल टू करके अल्लाह के अल्फाज जो हम बोलते हैं दिन रात में उससे टैली करें तो आटे में नमक कुरान है, और लोगों से पट पट होते बोलते ही रहते हैं, अल्लाह हमारी इसलाह कर दे। तीसरी चीज वजह, लापरवाही, केयरलेस एटीट्यूड है ना। देखिए, अब तो कोर्स भी पूरा होने वाला है, अब तो कुरान भी पढ़ रही हूँ, आप तो मैं हदीस भी पढ़ रही हूँ, देखो इतनी नेकियां, भला वो देखो फुलां फुलां, वो तो कुछ भी नहीं करती, वो तो नमाज भी नहीं पढ़ती, मैं तो नमाज भी पढ़ रही हूँ। ये बहुत बड़ी वजह होती है, और ये बहुत वालों की, बहुत सारों की वजह होती है, केयरलेस एटीट्यूड। जैसे लोग चेंज वापस नहीं लेते ना, कहते रख लो इट्स ओके, बोझ पड़ेगा परस में, इसी तरह बाजू हम नेकियों का चेंज नहीं लेते। बड़े बड़े काम बहुत शौक से करते रहते हैं, हाँ ये हजारों लगा के हम नेकी करेंगे और मुफ्त बड़ी नेकी हाथ में होती है उसको नहीं करते। दूर कोई चीज हो तो होके भरेंगे, कभी मौका मिले वहां जाएं और ये काम करें, और वही काम आपकी डोर स्टेप पे हो तो आप कहते हैं छोड़ो अब इनकी क्या बात सुनने। इंसानों की आदत है। फिर अगली वजह होती है मुनासिब माहौल का मुयस्सर ना होना। देखिए हर एक की वजह फर्क होगी ना, कुछ लोग सब कुछ चाहते हैं, इल्म भी होता है, सुस्ती भी कोई नहीं, लापरवाह भी नहीं, सरकमस्टांसेस ही सूटेबल नहीं है। फिर इसी तरह गैर जरूरी और गैर मुफीद कामों में मसरूफ रहते हैं तो अमल सवाले का वक्त नहीं मिलता। फिर एक और वजह भी होती है, अपनी सलाहियतों और कुव्वतों का ही नहीं इल्म कि अल्लाह ने मुझे क्या क्या स्किल्स देके भेजा, मैं कितने अमल सवाले कर सकती थी, पता नहीं। और पता चलेगा कि आमद के दिन जब अटारा खुलेगा और फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ये है इसके दिमाग का खाना जो इसने खोला ही नहीं सारी जिंदगी, इसके साथ ही कब्र में आ गया। एक दफा मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि जब कोई इंसान मरता है, एवरेज इंसान जैसे हम सब हैं, कोई साइंटिस्ट नहीं, कोई बड़े लोग नहीं, आम लोग जब मरते हैं तो वो अपने ब्रेन का 95% हिस्सा अपने साथ कब्र में ले जाते हैं। पूरी जिंदगी में 60-70 साल में एक एवरेज पर्सन सिर्फ 5% ऑफ ब्रेन यूज करता है, पता ही कोई नहीं कर क्या सकते थे। और ये डिस्कवरी चैनल तो हमने ज्वाइन ही नहीं किया जिसने हमारे अंदर की खूबियां भी खोलनी थी, जिस तरह कुरान हमारी खामियां खोलता है इस तरह हमारी खूबियां भी खोलता है, हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्या कर सकते हैं। फिर इस तरह एक और बहुत बड़ी वजह, दिल की सख्ती, बेहिसी है, बस होगा देखें, पता भी है करे, टीट बन है, बैठे हैं तो बैठे हैं। एक और बहुत बड़ी वजह, बल्कि बहुत ही बड़ी वजह, लोगों का डर। कितने अमल सवाले के मौके हम छोड़ देते हैं सिर्फ और सिर्फ लोगों के डर से, लोग क्या कहेंगे। फिर नवी वजह गुनाह। हर गुनाह नेकी के रास्ते की रुकावट है। वो याद कर ले इमाम शाफी के उस्ताद का शेर कि अल इल्म नूरुन, इल्म तो एक नूर है और अल्लाह ये नूर गुनाहगार दिल में नहीं डालता, हमारे गुनाह में रोक लेते हैं, बहुत सारी नेकियों से सजा मिलती है अल्लाह की तरफ से। फिर इसी तरह तरजीहात का कायम ना होना, यानी प्रायोरिटाइज ना करना नेकियों को, लीस्ट प्रायोरिटाइज थिंग्स में खोए रहना और इतनी प्यारी चीज को पीछे डाल देना। फिर एक और बहुत बड़ी वजह, हम अल्लाह से मदद ही नहीं मांगते कि रब्बी औज़ेन या नश्कुर नेमतकल्लती अनअमत अलैक, रब्बी औज़ेन या नश्कुर नेमतकल्लती अनअमत अलैक वअला वालिदैया वअन आमला सालिहन तरदाहु। अल्लाह से तौफीक ही नहीं मांगते बड़े बड़े कामों की, छोटे कामों पे खुश हैं और डर रहे हैं कहीं अल्लाह मुझसे बड़ा काम ना ले ले, ना 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 सॉरी, बहुत घर में रिएक्शन बहुत होगा, सॉरी। ये पता ही नहीं है कि तेज चलने वालों के आगे से लोग हट जाते हैं। गाड़ी तेज चलती है ना तो आपके आगे कोई नहीं खड़े होगा, आप सबसे आगे होंगे, और गाड़ी की स्पीड कम कर दें तो हर बंदा जो है ना आप देखिएगा आपके आगे आ जाएगा। जितना नेकियों में भागेंगे उतनी आपकी रिएक्शन, आपकी मुखालफतें, आपके घर के माहौल आपके मुवाफिक होंगे, और टुपक टुपक टिक 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 खड़े रुकते चलते जाते हैं उनको भी पता है कि ये अभी खुद ही नहीं जमी हुई तो हमें इन्होंने क्या कहना। तो लिहाजा अल्लाह से मदद नहीं मांगते। फिर एक और वजह होती है कि उस नेक अमल की अहमियत ही मालूम नहीं होती कि इसके करने से मुझे क्यामत के दिन मिलना क्या। फिर इसी तरह एक और वजह होती है कि उस नेकी की वजह से जो रिएक्शन आता है, जो मुश्किलात आती हैं, उस पर हमें काबू पाना नहीं आता, हैंडलिंग नहीं आती हमें, यानी सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते। और एक बहुत ही भोंडी वजह यह है कि अपनी मौजूदा हालत और अमल पे राजी है, चलो ना दूसरों से तो अच्छे ही है ना। देखो मेरी बहन ने तो अभी कुरान ही नहीं ठीक पढ़ा, मुझे तो माशाल्लाह इतने सारे याद हो गए। और एक और वजह, और इस तरह की बहुत सारी वजूहत आप भी ढूंढ सकते हैं, और वो क्या है कि नेकी के मौके की कदरदानी नहीं करते, ना कदरापन, राजी नहीं है अल्लाह की रजा पे कि उसने हमें नेकियों के लिए चुना। अब तो कुरान सिर्फ आपसे बोलेगा, अब बाकी इर्द गिर्द वाले छट गए, अब आप है और आपका रब है। जिस शहर में से अल्लाह ने आपको चुना इसकी वैल्यू ही ना हो, बस ठीक है जो होगा देखेंगे। फिर इसी तरह एक और वजह, दो तीन और जहन में है वो भी लिख लें, अल्लाह ताला से गलत तवक्कुआत का लगाना। देखना मुझे तो जन्नत मिल जानी, मैंने जाके एक स्माइल देना है, ओ अल्लाह जी, बस अल्लाह जी ने कहना जाओ ले लो, झूठी उम्मीदें अमल। फिर एक वजह है टालम मटोल, डिलेड एटीट्यूड। फिर एक वजह दूसरों पर डाल देते हैं अपने कामों को, इनकी वजह से नहीं करती, और शायद ये हमारे एशियन कल्चर की सबसे बड़ी वजह होगी। और एक बहुत बड़ी बात, और वो क्या कि नेकियों के फौरी नतायज नहीं नजर आते, और हम नतायज फौरी चाहते हैं, जिसकी वजह से फिर हम नेकियां कर नहीं पाते। और नुकसान क्या होता है, उल्टे पुल्टे काम करते रहते हैं और असल काम छोड़ देते हैं। आप देखिए कि ये सिर्फ काफिर की बात नहीं है, नाम निहाद मुसलमान भी कल यही कहेगा कि लाल लिया मलुसाल लेहन, अल्लाह मुझे वापिस भेज ताकि नेक काम करूं। आप देखिए कि आज अगर हम कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, कब्र में कितना वक्त होगा, सारा दिन बैठ के कोई तस्बीह पढ़ता रहे कब्र में, फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा, मोहलत खत्म, वक्त खत्म, कुछ कर भी लेगा तो कबूल नहीं होगा, इसलिए कि मरते ही गैब का पर्दा छट जाता है। और हमारा इम्तिहान है यूं मैं ना बिल गैब का, बिन देखे काम करना। मौत के साथ तो सारी हकीकतें खुलती हैं, जिस तरह आप देखिए कि पेपर आउट हो जाए तो क्या वो पेपर करने की इजाजत देता है कोई, तो पेपर तो आउट हो जाता है मौत के वक्त। और याद रखिए ये सिर्फ मौत के वक्त नहीं आता कि बल्कि जिंदगी में कई मौके आते हैं और अल्लाह लाता है कि अब संभल जाओ, अब संभल जाओ। यही बात सूरत मुनाफिक कौन आयत नंबर 10 और 11 में हम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं वन फिकु मिम रज़क़ना हुम मिन क़ब्ल याद याहदकुमुल मौत, खर्च करो इसमें से जो कि हमने तुमको दिया इससे पहले कि तुम्हारी मौत आ जाए, और उस वक्त तुम कहो कि लौला अख़्तरतनी इला अजलिन करीब, मुझे थोड़ी सी मोहलत तो दे दो फरिश्तों, क्यों? ताकि मैं सदका का करूं और वो काम कर लूं जो छोड़े हुए थे, अच्छे काम करूं। दो बातों की हसरत करता है बंदा मरते वक्त, क्या कि मुझे मोहलत दे दो, लौला अख़्तरतनी इला अजलिन करीब ताकि सद्दक वकुम मिन सालिहीन, तो आज फायदा कल फायदा नहीं होगा। सूरत अलनाम में भी हम पढ़ चुके वाला रुद्दू लादू, अगर इनको बिल फर्ज अल्लाह वापस भेज भी दे तो क्या ये अच्छे काम करेंगे? नेवर, लादू वही कुछ करेंगे जिसके आदि थे, जिसकी इनको आदत पड़ी हुई थी। सूरत इब्राहिम आयत 44 और सूरत सजदा आयत 12 में भी यही बात है कि क्यामत के दिन सर झुके होंगे, वलो तराइजिल मुजरिमून ना की शुरू से हूँ इन दौरों पे है, काश तो देखे कि मुजरिम उस दिन अपने सर रब के सामने गिराए होंगे, झुकाए होंगे। उस वक्त पता चलेगा ना कि हम क्या क्या चीजें अपनी मर्जियों की करते थे। तो हम सब अपने पर गौर करें, नेकियों के कितने मौके छोड़े और कितने पकड़े, वरना याद रखिए कि शैतान इंसान से गलत काम कराता है। हजरत जाबिर कहते हैं कि शैतान तुम्हारे हर हाल में और हर काम में तुम्हारे पास आता है और मुदाहलत डालता है और गुनाहों का वसवसा डालता है, ऐसे में इंसान अल्लाह की मदद से ही काबू पा सकता है। अब अगर आप पीछे वाले मजमून तक इस सारे को एक साथ देख लेना तो शैतान की उकसाहटें इंसान से नेकियां नहीं कराती। इसी तरह से आप देखिए कि शैतान की ख्वाहिश क्या कि लोग दुखी रहे, क्योंकि उसके अपने नसीब में गम है, तो वो लोगों को गमजदा करने के लिए दूसरों से भी बदगुमान करता है और नेकियों से भी दूर करता है। अल्लाह अकबर, हर चीज हमारी जिंदगी की जो है वो हमारे लिए एक बात है। फिर ये जो शैतान की उकसाहटें थी ना, इस पर चंद दुआएं और थी, पहले शुरू में मैंने नहीं बताई लेकिन आप नोट करना चाहें तो कर लें। कभी भी आपका दिल नेकियों में ना लगे, ये जो कुछ भी आप पढ़ लिए इसके बाद अब मैं क्या करूं, दुआएं मांगे। और दुआएं क्या मांगनी है कि अल्लाह जिस शैतान की वजह से मैंने नेकियां छोड़ी हुई है ना, तू मुझे उससे दूर कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ कसरत से मांगते थे, बल्कि आपको शायद पता हो कि नमाज के आगाज में भी मांगते थे, और वो दुआ क्या थी, आऊज़ु बिल्लाहि अस्समील अलीम, आऊज़ु बिल्लाहि अस्समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। ए अल्लाह, यानी इसका तर्जमा कि ये अबू दाऊद की रिवायत है किताबुस्सलात में और तिर्मिज़ी में भी है कि मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ जो असमी भी है और अललीम भी है, यानी जानता भी है और सुनता भी है। किससे? मिनश शैतानिर रजीम, शैताने मर्दूद से, यानी जिसके ऊपर पत्थर मारेंगे। मिन हमजी ही, ये हम्ज वही है जो यहाँ हमजात है, इसके वसवसों से, विस्पर्स। व नफ़्ख़ी ही, और शैतान की थूक से, और नफ़्सी ही, उसकी चूक से, यानी नफ़्ख़ी और नफ़्सी में म्यूजिक भी आता है और शैतान की तरफ से जो टेम्पटेशन होती है ना वो सब आता है। तीन दफा अगर नमाज के आगाज में इसको पढ़ा जाए, यानी बिल्कुल दुआ इस्तफ्ताह के साथ लग के नमाज रिवायतों में आता है, इंशाल्लाह जब आप नमाज की पढ़ेंगे डिटेल्स तो उसमें आपको ये दुआ मिलेगी, नमाज नबी में भी मौजूद है और होपफुली किताबु सलात में भी मौजूद है। लेकिन इन चीजों से अपने आप को बचाना चाहिए, और आप देखिए कि जितना ज्यादा आप बचेंगे, अल्लाह की बिना में आएंगे, उतना ही आपको फायदा होगा। फिर दूसरी बात देखिए कि आज 98 में हमने पढ़ा ना कि आउज़ु बिका रब्बी रब्बी, अल्लाह तेरी पनाह में आती है, तो अल्लाह की पनाह में आने से इंसान की और बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। इसीलिए बिस्मिल्लाह का कसरत से इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह के नबी की एक और दुआ मेरे साथ दोहरा लें, और ये खास कर दुआ है दुआ इस वक्त आपको इसलिए बताई जा रही है कि ये खूबसूरत है, साथ पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ुबिका मिनल हरमी व आउज़ुबिका मिनल हदमी व मिनल गरकी व आउज़ुबिका अन यतखब्बतनी यश्शैतानु इंदल मौत। इसमें आपने देखा कि लफ्जों से आपको तर्जमा तो समझ आ ही रहा होगा ना कि अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं कि अल्लाह शैतान मुझे मौत के वक्त खबती कर दे, क्योंकि वो बड़ा सख्त वक्त होता है और उस वक्त शैतान बंदे के ऊपर काबू पाता है। फिर इसी तरह आप देखिए डूब के मरने से, किसी चीज के नीचे आने के मरने से और इस तरह की तकलीफों से तो मुझे बचा। एक और दुआ भी अल्लाह के नबी रात के वक्त पढ़ते थे, कभी घबराहट में आंख खुल जाती थी तो आप दुआ करते थे, ये भी मांग लीजिए, बिस्मिल्लाह आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाति आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाति मिन गदबिही अबिही व मिन शर्रि इबादिही व मिन हमज़ाति शयातीनि व अन यहदुरून। अल्लाह के नाम के साथ मैं पनाह मांगती हूँ, अल्लाह के सारे कलेमात के साथ, उसके गुस्से से, उसकी पकड़ से, उसके बंदों के शर से और शैतान के वसवसों से और इससे कि वो मेरे सामने हाजिर हो। तो गोया कि आप देखिए कि ये दुआएं वाकई बंदे का हिस्सा है। हिस्नुल मुस्लिम में भी आपको ये दुआएं मिल जाएंगी इंशाल्लाह ताला, और असमुल बयान अगर आपके उस कुरान मजीद है तो उसमें भी इंशाल्लाह ये चीजें मिल जाएंगी कि किस तरह से अल्लाह ताला बंदे को शैतान के शर से बचने की दावत देते हैं। अब आप इन सब चीजों को अपने ऊपर लेकर सोचें इंशाल्लाह। जहां ब्रेक लेते हैं और फौरन ब्रेक के बाद हम मिल जाते हैं वापस, क्योंकि आए थे तो आगे भी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन फिर ये कि जो लोग सुबह से आके बैठे होते हैं उनके लिए तो मेरा ख्याल है कि इस दर्द से ना कोई बात जो आप शेयर करना चाहे इस हिस्से की, वरना फिर हम सूरत बाद में पूरी करते हैं। जी आप फरजाना ना मैं आपको भी जी जी आंटी जी आप कुछ कहिए। अस्मा आंटी कितने मौके हैं ना हमारे पास, और मैं अक्सर सोचती हूँ अपने हालात पे क्यास करके कि अगर हमने नेकी नहीं करनी, हमने इस्लाम का काम नहीं करना तो कौन करेगा। वो बेचारे जिनकी बिजली पूरी नहीं, पानी पूरा नहीं, घर टूटे हुए हैं, जिनके सौ मसले, यकीन करें कि हम लोग जन्नतों में रहते हैं और उतने ही हम ज्यादा नाजुक हैं। जी इधर से आप सुनिए। बिल्कुल इससे बुराई खत्म हो जाएगी। जी आप शायद ऑनलाइन पे भी लिखिए। मैं तो कहती हूँ मजा आता है सबर करने में, शुरू में मुश्किल होता है। देखिए लोगों की बातें या मुखालफतों पे सबर करना शुरू में मुश्किल होता है, बाद में आप इंजॉय करते हैं इसको। जैसे अगर आप कभी कड़वी कोई चीज दी है तो शुरू में मुश्किल लगती है, ठीक ही चाहे, बाद में आप एंजॉय करते हैं, फिर दिल करता है कि मुझे बात करें और मैं सब्र करूं। जी आप फरत सॉरी जी जनी आपको आंखों और बसारत का मतलब फर्क पता लगा, ठीक है जी आप सर बस सबको यानी देखिए हम में से कोई फरिश्ता नहीं है, और याद रखें कि हम में से किसी से शैतान मायूस भी नहीं है कि वो हमें नहीं बहकाएगा। हम सबके पास शैतान आता है, बस हमें उसको टैकल करना आना चाहिए। ब्रेक ले लीजिए जल्दी से, 20 मिनट मेरा लिए काफी है, क्विकली, और उसके बाद फिर वापस आते हैं।
जिस दो